हरे कृष्ण। आपको पता होना चाहिए कि ब्रज भूमि में एक भगवान का नाम लेने से 1,00,000 बार भगवान का नाम लेने का लाभ मिलता है। वैसे ही हरिनाम संकीर्तन में एक मंत्र बोलने से 1,00,000 बार एक ही बार बोलने का लाभ मिलता है। यहाँ पर होलसेल मर्सी है, होलसेल। इसलिए चुकना नहीं उसको लेने में। हाँ, जब कीर्तन का मौका आएगा, जब करने का समय आएगा, जब हरिनाम को पुकारने का समय आएगा, तो बिल्कुल कंजूसी मत करना। यहाँ पर कुछ ही समय में आप बहुत ज्यादा लाभ ले सकते हो। 16 माला करेंगे ना तो 16,00,000 माला करने का लाभ मिलेगा। ध्यान रखना इस बात। तो अगली जो स्थान हमारा है, जो यहाँ से हम जाएंगे, वो सामने दाऊ जी का मंदिर है, वहां दर्शन करेंगे बलराम जी का। उसके नीचे जो पुजारी हमको दिखाएंगे, वहां पर वज्रनाथ जी और उद्धव जी और उनका रुक्मिणी का दर्शन है। और उस गेट के पास में राधा पद बिहारी का दर्शन है, वहां पर दर्शन करेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे श्री श्री राधा और श्याम कुंड के पास। लेकिन राधा और श्याम कुंड के पास जाने के पहले कुछ मन की और तन की तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए सब लोग ध्यान सुनना। हाँ, खड़े हो गए तो रक्तमिश्रण अच्छा होता होगा ना, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रेन मत भी एक्टिव ना हो, इसलिए मैंने आपको खड़ा कर दिया, मचाया। क्योंकि हम जिस स्थान पे जा रहे हैं, बहुत ही ब्रज भूमि का सर्व सर्वश्रेष्ठ स्थान है, टॉप मोस्ट ऑफ ऑल प्लेसेस ब्रज भूमि, राधा कुंड एंड श्याम कुंड। तो उसका महिमा हमको समझना बहुत जरूरी है। और उसमें जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए हमारे में क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सबसे पहला विचार करना जरूरी है। और वो यहाँ पर तैयारी करके वहां चले जाएंगे। वहां पर कथा का कोई स्थान नहीं है, कथा नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर आप सुनिए कथा, मैं आपको बताऊंगा क्या तैयारी करनी है। तो भगवान जब यहाँ पर लीला कर रहे थे, तो एक दिन एक बड़ा बैल आया जिसका नाम था अरिष्टासुर। उस अरिष्टासुर को कंस ने युद्ध में पराजित करके अपना मांडलिक बना लिया था। फिर उसको बुलाया, जाओ ब्रज में, और जो लीला बालक है मार के आ जाओ। तो अरिष्टासुर जब आया, बैल के रूप में आया, बैल धर्म का प्रतीक है, माता गो माता जो है वो माता के रूप में समान है, सात माताओं में एक माता है, और बैल जो पिता के समान है, धर्म का लक्षण है वो। उनका चार पैर जो बैल के हैं वो दया, तपस्या और सच्चता, शुचि और क्या, यस, सत्य, सत्य, दया, तपस्या और स्वच्छता, यानी शुचि। ये चार पैर उसके प्रतीक है अपने धर्म के। लेकिन वो आया ही बैल के रूप में, इतना भयंकर बैल था वो। हमने कितना बैल देखा होगा, मैक्सिमम 6 फीट टॉल बैल देखा होगा हमारे इतना ऊंचा। लेकिन वो बैल ऐसा था कि उसकी पूंछ जो है वो ऊंची उठी हुई थी और बादलों को यहां से वहां कर रही थी, इतना बड़ा बैल था। जब वो पृथ्वी पर दौड़ के आ रहा था तो पृथ्वी पर भूकंप हो रहा था, धरणी कंप हो रहा था, धरणी कांप रही थी उसके पैरों के स्पर्श से, पैरों के आघात से। जब वो भाग भाग के आ रहा था तो उसके सांस से तूफान आ रहा था, केवल सांस से पेड़ गिर रहे थे। पानी कैसे पेड़ गिरते, इतनी हवा आती जोरदार, बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते, निश्चेष्ट होकर। ऐसा भयंकर माहौल था यहाँ पर जब उद्धव जी, सॉरी, जब भी अरिष्टासुर यहाँ पर आया। ऐसे वर्णन भागवत में आया कि उस समय जो गर्भवती गोपियां थी वो इतनी डर गई, वो पेड़ों पे लिपट गई और उनका गर्भपात हो गया। इतने भयंकर अवस्था यहाँ पर थी। तो ब्रज का निवास जो है वो इतना आसान नहीं। आप सोचिए, जब कृष्ण भगवान भी यहां पर थे ना, तो रोज आतंक हुआ करता था। एवरी डे गोकुल में हर रोज कोई ना कोई आ रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, दूध निकाल रहे, गाय का कोई खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, अचानक कोई राक्षस आ गया, कोई पुतना आ गई, बच्चों को मार रही, रावट आ गया, सब झज्जावार तूफान खड़ा कर दिया, भगवान को ले गया आकाश में। ऐसे भयंकर राक्षस आते थे यहाँ पर, और रोज के रोज यहाँ पर। एक भी वर्षा हो गई, 7 दिन 7 रात बहुत दिन तक वर्षा हो गई, सब गाँव बह गया पूरा, गाय बैल बह गए। फिर भगवान ने गिलास को उठाया। तो यहाँ का लाइफ भी जो है ना, इसमें एक रहस्य है। यहाँ पर रहस्य ऐसा है कि यहाँ पर आनंद गारंटेड है, लेकिन पीस गारंटेड नहीं है। ब्लिस इज गारंटेड इन ब्रज भूमि, बट पीस मे नॉट बी अवेलेबल। अगर आपको आनंद चाहिए थोड़ा शांति को खोना पड़ेगा ऐसे ब्रज करने से, क्योंकि दिन भर यहाँ पर आतंक हुआ करता था भगवान के होने पर भी, भगवान का निवारण करते थे लेकिन उनके होने पर भी आतंक तो हुआ ही करता था। कंस भी यही था और भगवान भी यही थे, साथ साथ थे दोनों। तो वैसे अरसतुर आया, सब गोपियां ग्वाल बाल सब डर गए, बहुत भयंकर आतंक हो गया। तो भगवान ने फिर बड़ी सुंदरता से आसानी से उस बैल का वध कर दिया, उसको पीछे के पैर से पटक उठाकर 7 साल के बालक ने घुमा घुमा कर ऐसा पटक दिया, एक ही साथ में मूत्र और लीन डाल दिया उसने, और पटक पटक कर पैर झटक झटक कर उसने अपनी जान छोड़ दी। उसके शरीर का जो ज्योति था भगवान के शरीर में विलीन हो गया। तो फिर ऋषासुर को मारकर भगवान बड़े ऐड से बड़े गर्व से गोपियों को मिलने आए, अरे मैंने इतना पराक्रम किया, गोपियां भी बहुत सराहना करेगी, बहुत गौरव करेंगी मेरा। उल्टा गोपियां कह देगी हमसे नहीं मिलना, हम आपको नहीं मिल सकते, आप हमारे मिलने के योग्य नहीं हो। क्यों, रोज तो मिलता हूं, आज क्या हुआ? तो मैंने आपने बैल को मारा है, आपने धर्म का अपराध किया है, आप बड़े पापी हो। बैल और गाय के शरीर के अंदर सारे देवता सारे धाम लक्ष्मी जी स्वयं निवास करती है, आपने उसका वध किया है। अरे वो कहते हो बैल नहीं तो राक्षस था, वो कंस के द्वारा भेजा गया। बोले कुछ मालूम नहीं हमको, आपने हम तो बैल देखा। भगवान तो व्याकुल हो गए, गोपियां तो बात करने से मना कर रही है, बात ही नहीं कर रही, मिलना नहीं चाहती है, लीला नहीं करेंगे, आनंद नहीं देगी। और बड़े व्याकुल हो गए, तो क्या करूं मैं अभी, बताओ कुछ उपाय तो बताओ। मैंने कहा कि आपको इस विश्व के सभी धाम के जितने धाम है, जितने पर्वत है, जितनी नदियां हैं, जितने तीर्थ स्थान है, जितने कुंड है, उस सब जगह स्नान करना पड़ेगा, आपको तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी, तब आप इस पाप से मुक्त हो सकते हो, अथवा आप हमसे मिलने योग्य हो सकते हो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको बताया कि आपको दोबारा अगर ब्रज में आना होगा तो पूरे वर्ल्ड के जितने भी पवित्र स्थान है दर्शन करना होगा, तो आप बोलेंगे चलो ब्रज में जाना है कैंसिल कर, क्या कौन करेगा। लेकिन भगवान के लिए जरूरत नहीं है सब जगह बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी करके यात्रा करनी। भगवान ने कहा जिन जिन पवित्र स्थानों पर मुझे जाना होगा और वहां पर स्नान दर्शन करना होगा आदि, उन सभीों को मैं यहां बुलाता हूं ब्रज में ही, वो सब यहां पर आके अपना स्थान ग्रहण करेंगे और मैं उनमें फिर स्नान करके दर्शन करूंगा। तो भगवान ने केवल मन में स्मरण किया, मैंने कहा ना पहले आपको सभी धाम जो है वो व्यक्ति है, दे आर डिवोटीज, दे आर पीपल। सब धाम जो है तो पर्वत के रूप में थे, कुंड के रूप में थे, नदी के रूप में थे, सरोवर के रूप में थे, और जितने भी स्थान थे पवित्र स्थान सब एकत्र हो गए यहां पर। भगवान ने अपने हाथ जोड़ कर भगवान क्या सेवा करनी बताओ, बस सब लोग यहां बस जाओ। उन्होंने अपनी मुरली से अपने पैर से गड्ढा बनाया और बड़ा कुंड तैयार किया खाली, तो यहाँ पर बस जाओ सब लोग, नदियां समुद्र कुंड सरोवर अपना जल डालो, बाकी सब तीर्थ स्थान जो है वो यहाँ बस जाओ। तो उस कुंड में केवल नदियों का पानी नहीं है, डोंट मिसअंडरस्टैंड, वहां पर 84,000 तीर्थ जो है वो उपलब्ध है, निवास कर रहे हैं उसके अंदर, और उससे बना श्याम कुंड, और सारे नदियों के और पर्वतों के सानिध्य में भगवान ने श्याम कुंड में स्नान किया। भगवान ने श्याम कुंड में स्नान किया और बड़े ऐड से भगवान सखाओं के साथ वापस गए। तो भगवान ने कहा कि अभी आप हमसे बात करने के योग्य नहीं हो। अभी क्या हो गया, तुमने राक्षस का पक्ष लेके हमसे विवाद किया, राक्षस का पक्ष लेके उसके बाजू से हमारे साथ विवाद किया है, इसलिए आपको भी वो पाप लग गया है, अभी आपको भी सारे तीर्थ में जाके स्नान करना होगा, तब जाके आप हमसे मिलने योग्य हो जाएंगे। तो राजा रानी ने क्या किया, एक गोपियों की लंबी लाइन लगाई वहां से मानसी गंगा तक, हम उसकी कथा बाद में बताएंगे आपको। वहां गंगा जी प्रकट हो गई है ब्रज में, तो वहां से जैसे वो मटका भरते हैं ना, वहां से मटका भर के वो ट्रांसफर कर करके उन्हें कंगन तोड़ दिया अपने, कंगन से गड्ढा बनाया और वहां से मानसी गंगा से लाइन लगा के ट्रांसफर करते 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 और मटके से पानी डालना आरम्भ कर दिया। सबके कपाल पर पसीने के बिंदु आ गए, सब थकान आ गई उनको, बहुत परेशानी, बहुत मेहनत कर रहे सब लोग, और कृष्ण भगवान ग्वाल बाल और आए हुए सभी देवता सभी धाम सभी नदियां जो व्यक्ति रूप में खड़े हाथ जोड़ के खड़े हैं, श्री जी महारानी हमको सेवा दो, इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं, हमें बताओ, हम सब आपके कंगन से बने हुए कुंड में प्रवेश करेंगे, इतना कष्ट क्यों करते हो। नहीं नहीं हम अपना पानी लेके आएंगे। बहुत देर कर उन्होंने कष्ट किया, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा बहुत जल ही वहां पर पकड़ हो रहा था। फिर भगवान स्वयं गए और श्री जी से उन्होंने प्रार्थना किया कि देखो इतने दूर दूर से धाम आए हैं, अपने अपने सेवा छोड़कर अपने चरणों में आए हैं, उनको सेवा दे दो, रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं आपके लिए, कृपा करके उनको सेवा लीजिए। तब करुणामयी राधा रानी ने उनको स्वीकार कर लिया। सब गोपियां मासी गंगा से यहां पर आ गई। उनके सामने सभी नदियों ने, समुद्रों ने, कुंडों ने, सरोवरों ने और तीर्थों ने, पर्वतों ने वहां पर आश्रय ग्रहण किया और एक बहुत सुंदर कुंड बना बन गया। उसका नाम है राधा कुंड। और राधा कुंड में राधा रानी ने गोपियों के साथ स्नान किया। उसी समय भगवान ने ऐलान किया कि राधा कुंड जो है, ये जितनी राधा रानी मुझे प्रिय है उतना ही प्रिय होगा। और ये कुंड में जो भी स्नान करेगा वो जितनी राधा रानी मुझे प्रिय है उतना ही प्रिय हो जाएगा। और राधा रानी का स्वयं स्वरूप होगा, ये द्रव रूप स्वरूप होगा, स्वयं राधा रानी वहां पर विराजमान होगी। जिस प्रकार से वो भगवान ने यहां पर ऐलान किया, और कोटि कोटि जन्म के पाप जो है उसके दर्शन मात्र से, स्मरण मात्र से, सोचने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से नष्ट हो जाएंगे, ऐसे भगवान ने बताया। तो राधा कुंड में जो है हम लोग स्नान नहीं करते, क्योंकि हम लोग उसके राधा रानी के शरीर को पहले से लगाएंगे, उसमें कैसे प्रवेश करेंगे। जैसे किनारे में बैठकर हम लोग केवल उसके जल का स्पर्श करते हैं, तीन बार जल को मुंह में लेते हैं आचमन के रूप में, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः से आचमन करते हैं और तीन बार छींटे हमारे सर पे डाल देते हैं, उसी को स्नान के बराबर है। आठ प्रकार के स्नान बताए गए, उसमें आचमन भी एक स्नान है। एक रज स्नान है, ब्रज के, एक भस्म स्नान है, एक हरिनाम स्नान है। हरिनाम के करते ही सब शुद्ध हो जाते हैं, स्नान की आवश्यकता बचती नहीं, फिर भी हम स्नान करते हैं क्योंकि हम लोग स्तर पर नहीं है। और एक स्नान है आचमन स्नान, जो आचमन करने से हम स्नान के जैसे ही लाभ प्राप्त करते हैं। तो आप लोगों को अभी ध्यान रखना है कि राधा कुंड जो है उसकी महिमा अगाध है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि राधा कुंड में निवास प्राप्त करना मतलब जीवन की अंतिम अंतिम प्राप्ति है। राधा कुंड का निवास मतलब परम प्रेम की प्राप्ति। राधा रानी वहां पर बड़ी दयालु होती है। राधा कुंड के आसपास में राधा रानी हमेशा विराजमान रहती है। खास करके 11:48 पर वहां पर राधा और कृष्ण की लीला होती है। और वहां पर पाशा किला घाट भी है, वहां पर राधा रानी और भगवान क्या कहते हैं उसको, सारी पाठ मतलब क्या, जूत खेलते हैं, क्योंकि भगवान राधा रानी को सभी खेल में हरा देते हैं। तो फिर वो राधा रानी उनको चेस खेल में बिठाती है और चेस में उनको हरा देती है। तो पाशा मतलब पास है ना, फांसे वाणी बोलते हैं। तो पाशा किला घाट है वहां पर राधा रानी और कृष्ण भगवान जो है पाश खेलते हैं। और उसके सामने लीला का घाट है, वहां पर पंच पांडव भी निवास करते हैं। पंच पांडव जब राधा कुंड का निर्माण और रिनोवेशन करने का प्रयत्न किया गया, तभी जब पेड़ काटने का आरंभ किया गया तो स्वप्न में रघुनाथ दास गोस्वामी के पंच पांडव आए। युधिष्ठिर महाराज भी बोले उनको कि हम यहाँ पर पेड़ के रूप में रह रहे हैं और भोजन कर रहे हैं, इसलिए हमको नहीं काटना। अभी वो पांचों पेड़ लुप्त हो गए हैं, एक पेड़ का शरीर वहां बचा हुआ है, तो धर्मराज पेड़ था वो भी वहां उपस्थित है। इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि यहाँ पर राधा कुंड के किनारे सभी संप्रदायों के सभी आचार्यों ने भजन किया है। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है, कोई भी ऐसा संप्रदाय नहीं है भक्ति में जिनके आचार्य राधा कुंड किनारे नहीं आए हैं, उनका भजन नहीं किया है। हमारे संप्रदाय के सारे गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने तो स्वयं उसको प्रकट किया है। राधा कुंड और श्याम कुंड को लुप्त हो गया था, दलदल में फंसा हुआ था, राधा कुंड और श्याम कुंड को चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया है। जब वो ध्यान लगा के बैठे तमाल तला में, तो चैतन्य महाप्रभु को राधा कुंड और श्याम का दिव्य दर्शन हुआ उनकी आंखों के सामने ध्यान में, और आंख खुले तो वो श्याम के सामने था। इसलिए वहां से उठकर उन्होंने छलांग लगाकर कूद लगाई एकदम छोटे से डबके के अंदर। सब लोग आश्चर्य के तो कह रहे सन्यासी इतना प्रेम से क्यों नाच नाच कर क्यों उछल रहा है इसके अंदर, राधा और श्याम कुंड है। तो चैतन्य महाप्रभु जब पूछते पूछते आए यहाँ पर राधा और श्याम कुंड कहाँ है, कृष्ण अवतार में स्वयं किए हुए लीला के बारे में पूछताछ कर रहे थे, कोई बता नहीं पाया उनको राधा कुंड श्याम कुंड का। और जब उन्होंने स्नान किया तो दुनिया के लिए पुनः दोबारा राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट किया और रघुनाथ दास गोस्वामी को आदेश देकर उनके द्वारा उसका जीर्णोद्धार किया उन्होंने। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने स्नान करने के पश्चात उसके नीचे की रज को निकालकर उसका तिलक बनाकर अपने शरीर को लगाया और बलभद्र भट्टाचार्य को बताया कि ये तिलक जो है साथ में लेके भी चलो, हम रास्ता में और भी यूज करेंगे। राधा कुंड की रज है वो, स्वयं राधा रानी के निवास जहां पर है वहां की रज है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उसको अपने साथ लेकर तिलक किया उसको। रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि उसके अंदर है, जहां पर जिन्होंने वहां पर भजन करते हुए वहां पर उसका जीर्णोद्धार किया। रघुनाथ दास गोस्वामी इतने श्रेष्ठ भक्त थे भगवान के, इतना भजन करते थे वो कि उनको धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश किसका फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार वो भजन कर रहे थे, बड़ी तेज धूप में भजन कर रहे थे, इतनी तेज धूप थी कि चमड़ी के ऊपर फोड़े निकल रहे थे, इतनी गर्मी थी उस समय। लेकिन ये भजन में इतने मग्न थे, उनको कोई परवाह नहीं हो रही क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। उनका वो जलते हुए चमड़ी के अवस्था को देखकर राधा रानी स्वयं प्रकट हुई और अपना उत्तरीय वस्त्र जो है, अपना जो चुंदरी है उसको, उसकी छाया दिया उन्होंने, और ये भजन में मग्न है, उनका ही भजन कर रहे हैं, और वो स्वयं प्रकट होकर उनका दुपट्टा से उसको छाया दे रहे हैं, और राधा रानी धूप में खड़ी है, उनके कपाल प्रदेश पर पसीने के बिंदु आ रहे हैं, स्वयं तप रही है, पसीने आ रहे हैं उनको, और अपने भक्त को छाया दे रही है। ये दृश्य जो है सनातन गोस्वामी देखते हैं और बड़े दुखी हो जाते हैं। बाद में मिलते हैं दास गोस्वामी को, बोलते हैं आप भजन करते हो उनको संतुष्ट करने के लिए, उनकी सेवा में करते हो, और आपका भजन ऐसा है कि स्वयं राधा रानी आपकी सेवा कर रही है, ये सही नहीं है, अपनी कुटिया बना लो आप, क्योंकि आप खुले में बैठे थे, आपकी कुटिया थी नहीं, इतने विरक्त थे वो, ना कुटिया थी, दो दिन में एक बार छाछ पीते थे, फिर भी उन्होंने कुटिया नहीं बनाई। एक्चुअली मैं उल्टा बता रहा हूं आपको, इसके पहले जो घटना हुई है वो बताता हूं। पहले ऐसे ही राधा कुंड किनारे बैठ के भजन कर रहे थे, तो इतने मग्न हो गए कि वहां से एक शेर आया पानी के लिए, पानी पीने के लिए। जब पानी पीने के लिए शेर आया, तो वो शेर से दास गोस्वामी को बचाने के लिए भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो गए डंडा लेकर, और शेर को भगवान ने भगा दिया। और ये भी सनातन जी महाराज ने देखा, उन्होंने कहा ऐसा क्यों करते हो, आप भजन कर रहे हो, भगवान को सेवा में लगा रहे हो, आपको कोई कष्ट ना होना चाहिए, आपकी सुरक्षा बनी रहनी चाहिए, इसलिए भगवान ने स्वयं आकर डंडा लेकर शेर को भगा दिया, आप अपनी कुटिया बना लो। नई कुटिया बनाई उन्होंने, फिर अगली बार ने दर्शन किया कि राधा रानी छाया दे रही है। राधा रानी भगवान की परम भक्त हैं, जिनकी कृपा से भजन कर सकते हैं हम, और उन्हीं को आप सेवा में लगा रहे हो। तो तब जाकर फिर दास गोस्वामी ने अपनी भजन कुटी बनाई छोटी सी, वो भी वहां पर है। और फिर जब वो शरीर छोड़ के चले गए, तो उनकी समाधि भी वहां बना गई, जीव गोस्वामी ने उनकी समाधि बनाई, वो भी वहां उपस्थित। जानवा देवी जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी है, उन्होंने भी वहां पर निवास किया है, उनकी बैठक भी वहां पर। जर्मा देवी और दास गोस्वामी की बहुत सुंदर भेंट का वर्णन भी शास्त्र में आता है, भक्ति रत्नाकर में उन दोनों का मिलाप मिलन हुआ वहां पर, मतलब वार्तालाप हुआ भक्ति पूर्ण कर। तो जर्मा देवी ने वहां पर रहकर बहुत दिन तक राधा कुंड में भजन किया और राधा कुंड में स्नान भी किया है। ऐसे राधा कुंड के अंदर अनंत स्थान है, क्या क्या बताएं आपको, एक दिन पूरा भी नहीं मिलेगा तो भी पूरा नहीं हो सकता है, इतने स्थान है। सभी गोस्वामियों का निवास है, सभी गोस्वामियों की भजन कुटिया है, सभी गोस्वामियों के समाधि स्थल है। राधा कुंड के किनारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत का लेखन किया है, वो कमरा भी वहां पर। उसके किनारे में प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका निवास स्थान भी है, जो उनके पिताजी ने यानी कि ठाकुर भक्ति विनोद ने बनाया था, तो भक्ति ठाकुर भी निवास किया है और उनके पुत्र ने भी वहां पर निवास किया। और प्रभुपाद जी का भी उनका गुरु जी का मुलाकात एक बार राधा कुंड के किनारे में हुआ था, उन्होंने उनको दिव्य आदेश दिया था, इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स, ये आदेश जो था उन्होंने राधा कुंड किनारे में प्रभुपाद जी को दिया था। और श्याम कुंड के पास किनारे में भी बहुत सुंदर सुंदर स्थान है, नित्यानंद जी प्रभु भी वहां पर आकर उन्होंने भजन किया हुआ है, नित्यानंद का भी वहां पर जगह है, माधवेंद्र पुरी ने यहाँ पर भजन किया हुआ है, उनकी भी भजन कुटी वहां पर है, जीव गोस्वामी की भजन कुटी है। और राधा कुंड श्याम कुंड जब वहां पर उत्पन्न हुआ, तब सखियों ने भी अपना सब आठ कुंड वहां बना लिए, तो उस आठ कुंड में से अभी ललिता कुंड का दर्शन अभी भी वहां पर होता है। राधा कुंड श्याम कुंड और अष्टकुंड, ये सब बहुत दिव्य माहौल है। और जब दास गोस्वामी इसका उत्खनन कर रहे थे रेनोवेशन के लिए, तो एक बार उनके उत्खनन में एकदम जो कुल्हाड़ी से मार रहे थे, अचानक खून की धार उठी, सब डर गए, भाग भाग के दास गोस्वामी के पास आ गए, बोले कि हमने जब खुदाई करने का प्रयास किया तो एक पत्थर को लगकर पूरा खून निकल आया, तुरंत ने खुदाई का काम बंद कर दिया। उस रात दास गोस्वामी को स्वप्न आया और भगवान जो गिरिराज गोवर्धन स्वयं आए, उन्होंने बताया कि आपने मेरी जिह्वा पर आघात किया, इसलिए वो अभी प्रेम से उस जिह्वा जो शिला है उसको निकालकर इसके किनारे में स्थापन कर देना। तो उन्होंने बड़े प्रेम से उसको सावधानी से निकालकर राधा कुंड के बाहरी जगह पर उसको स्थापन किया, वो अभी जिह्वा मंदिर के रूप में वहां प्रसिद्ध है, उसको भोग लगा दिया। और देख रहे गोस्वामी जी कि सब लोग कपड़े भी धो रहे हैं, हाथ भी धो रहे हैं, कोई स्नान भी कर रहा है, कोई कुछ और बर्तन भी मांज रहा है, वो जानते थे राधा कुंड श्याम कुंड का इलाका जो है बहुत पवित्र स्थान है, साधारण जल नहीं है जो नल में से आता है और न यहाँ से पाइप से आता है, स्वयं राधा रानी है, द्रव रूप का प्रेम है वो, इसका जल जो है कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने वो कुआं बनाया जिसको बनाते हुए वो धार निकली खून की, तो वो कुआं फिर उन्होंने बनाया, उसमें वो जल जल दिया, उन्होंने जल उत्पन्न हुआ और वहां के शिला को निकाल के जीवा मंदिर बनाया और वहां पर लोगों ने फिर अपने कपड़ा धोना वगैरह आरंभ किया, उनका नाम है गोपी कुआं, वो भी वहां पर स्थान है। इस तरह राधा कुंड जो है वो परम तीर्थ स्थान है, वहां का निवास जो आपको मिलेगा 5 मिनट का 10 मिनट का 15 मिनट का जो मिलेगा वो जीवन की परम प्राप्ति है। इसलिए राधा कुंड श्याम कुंड के पास चलते हुए कोई बात नहीं करेगा, आप वादा कीजिए मुझसे, मुंह से कोई बात नहीं करेगा, केवल हरिनाम संकीर्तन हरिनाम जप करते हुए चलेगा और केवल सेवा के लिए जो अनुकूल चीजें हैं उसी की बातें होंगी, कोई भी यहाँ वहां की दुकानदारी की हाँ कोई खरीदना है, कोई माला खरीदना है, कोई झोली खरीदना है, किताब खरीदना है, कोई रुमाल खरीदना है, कुछ भी आपको कहीं देखना नहीं है, केवल राधा कुंड श्याम कुंड की जो कृपा है वो प्राप्त करने के विषय पर अपने हृदय को केंद्रित करना है एकदम शांति से। फिर आप लोग राधा कुंड श्याम कुंड किनारे में उतरेंगे बड़े भक्ति भाव से एकाग्रता से बिना बात किए हुए उसको जल को स्पर्श करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, जल को स्पर्श करके 3 बार सीटे सर पे उठाएंगे और 3 बार हाथ में पानी लेकर उसका आचमन करेंगे और भगवान का ध्यान करेंगे, राधा रानी को पूजेंगे, भजन करेंगे, उनकी याचना करेंगे, कृपा याचना करेंगे, अनंत मात्रा में आपको जीवन में राधा कुंड के नारे में कृपा प्राप्त हो सकती है जिससे भगवान के ऊपर प्रेम और भक्ति हमको मिल सकती है। इसलिए आप लोग को विनती है कि आप मुझे वादा कीजिए कि आप लोग यहाँ से बड़ी गंभीरता से निकलेंगे, बस में बैठेंगे, राधा कुंड के एक जगह पर उतरेंगे और वहां से हरिनाम मंडली के साथ साथ में केवल गाते हुए जप करते हुए निकलेंगे, राधा कुंड श्याम कुंड दोनों में आचमन करेंगे और एक पूरी परिक्रमा करके दोबारा आके बस में